प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं अपने मित्र अपने साथी सजीव सारथी के साथ। दोस्तों आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक हरफन मौला कलाकार हैं, ये एक उमदा गीतकार हैं, एक शानदार शायर भी हैं और एक बहुत अच्छे लेखक हैं। खास तौर पर हिंदी फिल्मी गीतकारों के ऊपर इनका जो रिसर्च है, इनकी जो किताबें हैं वो हर संगीत प्रेमी के लिए एक संग्रहणीय वस्तु है। तो दोस्तों तहे दिल से स्वागत कीजिए विजय अकेला जी का। विजय भाई आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर और कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है पर बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सजीव साथी साहब, आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए बुलाया।
विजय भाई हमारे इस कार्यक्रम की ये खासियत रहती है या ये परंपरा रहती है कि यहाँ पे हम जो कलाकार आमंत्रित हैं उनको पूरा मौका देते हैं कि वो अपने पूरे दिल की बात कहें। तो क्योंकि आप तो इतने अच्छे वक्ता भी हैं और आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत सुंदर है, तो मैं बहुत कम बोलूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप ही शुरुआत करें अपने संगीत सफर के बारे में, हमारे श्रोताओं को बताएं कि कैसे और कब ये शुरू हुआ।
सजीव साहब अगर आप संगीत सफर में गीत सफर भी जोड़ दें तो मुझ जैसे एक शायर को बड़ी खुशी होगी। आपने मेरी आवाज़ की तारीफ की तो मैं शुक्रिया तो कहूँगा ही आपको। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक रेडियो जॉकी भी रह चुका हूँ, हार्ड कोर रेडियो जॉकी। मैंने न सिर्फ मुंबई में रेडियो जॉकी की है कई वर्षों तक बल्कि खाड़ी के देशों में भी मैंने काम किया है, दुबई वगैरह में है। ये तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया आवाज़ के बारे में। भाई देखिए शायर तो मैं शायद बचपन से ही था, शायरी के जो गुण हुए वो तो उसमें बचपन से ही भरे हुए थे। इसलिए जब जवान हो रहा था तो मैंने अपना एक तखल्लुस भी रख लिया अकेला। हर शायर एक बाकी इंसान होता है, अगर जिसने अपने नाम के साथ जो कि सबसे आसान और सबसे मुश्किल बगावत है वो ना करे तो फिर वो शायर कैसा, मजरूर साहिर कैसी, सब ने यही तो किया है। खैर मुंबई बहुत वर्षों पहले ही मैं आ गया था और एक एक्टर बनने आया था। मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं बेसिकली शायर हूँ और पेट पालन के लिए ब्रेड बटर के लिए मैंने पहले तो जर्नलिज्म शुरू की और फिर उसके बाद रेडियो जॉकिंग शुरू की। मैं इंटरव्यू कर रहा था एक रोज़ राजेश रोशन जी का, जैसे मैंने बहुत सारे संगीतकारों का गीतकारों का किया था, एक्ट्रेस का किया था। और वहाँ पे जब मैंने गीत लिखने की पूरी परंपरा ट्रेडिशन स्टाइल देखा तो मैंने सोचा ये काम मैं बड़े आसानी के साथ कर सकता हूँ। और फिर मैंने राजेश रोशन जी से ये गुजारिश की कि अगर गीत लिखना इसी को ही कहते हैं तो ये काम मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने उनको कई चीज़ें सुनाई जो उन्हें बेहद पसंद आई और तोहना प्यार है का वक्त भागो एक गाना बाकी था उस फिल्म में, डांस नंबर जो रितिक से पिक्चराइज किया जाने वाला था। तो बस राजेश रोशन जी ने ट्यून दी और हमने उसको लिखना शुरू किया। वो गीत फर्स्ट गो में बहुत पसंद आया सभी को, सभी को से मेरी मुराद है रितिक रोशन साहब को, राजेश रोशन साहब को, राजेश रोशन साहब को, लकी अली को, उनके गिटारिस्ट कल्याण को, बड़ा खान को। और इस तरह एक सिलसिला शुरू हुआ गीत लिखने का, शायद मैं पहले से कर रहा था फिल्मों में इस तरह एंट्री हुई।
जी कहने को ये एक डांस नंबर है लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी फिलॉसफी आपने इसके अंदर इस्तेमाल की है कि खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल मिलाएंगे। तो विजय भाई ये जो शब्द हैं, ये जो लाइनें हैं, इनमें आपकी जो कलाकारी है एज ए शायर या कह लीजिए कि आपकी जो डेप्थ है बात कहने की वो बाखूबी नजर आती है। तो ये जो गीत है जब ये रिकॉर्ड हुआ तो मेरे ख्याल से आपकी पहली रिकॉर्डिंग रही होगी, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जी।
ये गीत सचमुच ऐसा तो लगता नहीं है कि ये कोई डिस्को में गाया जाने वाला गीत है, क्योंकि डिस्को में गाए जाने वाले गीतों की लिरिक्स जाने वाली बात तो करती नहीं है। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल से मिलाएंगे, तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल को गाए जा। मैंने जब ये मौका मिला तो कोशिश यही की कि क्यों ना मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखूं, और इसलिए मैंने काम तो थोड़े कम किए हैं, लेकिन अगर आप और गीतों की बात करेंगे तो मैं उसमें ये पिन पॉइंट करने की कोशिश करूंगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसी बातें अपने गीतों में की हैं जो शायद पहले इस्तेमाल नहीं की गई। जैसे मेरा एक और गीत है, मुझे मोहब्बत सी हो गई है। मोहब्बत के तो हमने आपने हजारों नगमे सुने हैं, मगर क्या आपने मेरे गीत से पहले मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है सुना है बताइए। या अभी अभी एक गीत आया है इसी वर्ष, बहारें बीतने को हैं बताओ ना कब आओगे, उम्मीदें रीतने को हैं बताओ ना कब आओगे। अब बताइए 100 साल फिल्म इंडस्ट्री में उम्मीदें बीतने को हैं, बहारें बीतने को हैं के साथ उम्मीदें रीतने को हैं, आपने रीतना वर्ड सुना है फिल्म गीतों में? तो हैं ऐसी बातें, आपने इस ओर इशारा किया, शुक्रिया। देखिए जब गीत लिखना हो गया और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग की घड़ी आई तो उसमें कई दिलचस्प वाक्या हुए, कई दिलचस्प वाक्यात हुए। एक अंतरे में लाइन है कि एक चेहरा खास है जो दिल के पास है, होंठों पे प्यास है, मिलने की आस है। तो इसके सिंगर लकी अली को आस लफ्ज पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस हिंदी उर्दू के प्यारे लफ्ज आस को अंग्रेजी का आस समझ रहे थे। तो वो बड़ा बखेड़ा एक हो गया और रिकॉर्डिंग कई महीनों तक बंद हो गई। राकेश रोशन जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप सिंगर हैं, आप लफ्जों के पीछे ना पड़े, मगर वो बस पड़ गए थे उसके पीछे। और फिर बाद में इन्हीं लफ्जों के साथ, इसी लफ्ज के साथ करीबन 6 महीने बाद उसकी रिकॉर्डिंग हुई। और जब एक दफा रिकॉर्डिंग हुई, जब सबका मन बना, तब तो रिकॉर्डिंग के वक्त से ही लग रहा था ये गीत एक खास गीत होगा। और हम लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कोई गीत की रचना होती है और उसमें वाद विवाद होता है तो ये एक तरह का सिग्नल होता है कि ये गीत हिट होने जा रहा है।
विजय भाई, बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि लकी अली जो है वो इस तरह से भी एक हिंदी उर्दू के इतने अच्छे शब्द को इस तरह से भी ले सकते हैं। खैर, ये एक आइकॉनिक गीत है नो डाउट, तो हम अपने श्रोताओं को इसको जरा एक झलक इसकी सुनवाते हुए चलते हैं और फिर मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, हम बातचीत जारी रखते हैं।
जीना तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। एक पल का जीना तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे गोल छिल मिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हसाना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा।
विजय भाई, तो ये बताइए कि इससे पहले जब आप फिल्मों में नहीं आए थे, उससे पहले जैसे कि आपने बताया कि आप अदब की दुनिया में, शायरी की दुनिया में एक मुकाम अपना हासिल कर चुके थे, तो क्या आप उस वक्त सोचते थे कि आपको फिल्मों में भी लिखना है या अपने आप को अदब की सेवा में ही आप डेडिकेट करना चाहते थे? और ये भी बताइए कि या उससे पहले कोई आपका संकलन, कोई कलेक्शन आपकी मार्केट में आ चुकी थी क्या?
अदब की सेवा में क्या करूँगा, अदब की सेवा करने वाले बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में, सच्ची बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं तो एक एक्टर बनने आया था, लेकिन मैं था अंदर से एक शायर। और जैसा कि मैंने कहा, ब्रेड एंड बटर के लिए मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी। हाँ, मैं अपने लिए कुछ ज़रूर लिखता था, मगर वो बहुत काफ़ी नहीं था। मैं स्ट्रगल कर रहा था एक्टिंग की, और उसमें मुझे कुछ भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। जबकि मैंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से एक कोर्स भी किया हुआ था, और जहाँ का मैं रहने वाला हूँ पटना का, वहाँ पे मैंने बहुत थिएटर किए थे, ख़ास तौर पे स्ट्रीट प्ले। ये बात अलग है कि मुंबई विश्वविद्यालय में भी जब मैंने एक स्ट्रीट प्ले किया था, असगर वजाहत साहब का लिखा हुआ दोनों मारे जाएंगे, तो मुझे हॉस्टल से निकाला दे दिया गया था। खैर, वो पुरानी बात थी। और जैसे मुझे मौका मिला और मैंने देखा कि मेरा ध्यान, मेरा मन बहुत ज़्यादा लग रहा है गीत लिखने में, और मैंने एक बात और गौर की, जो मैंने इंटरव्यू उन दिनों किए थे उस पर जब मैंने दृष्टिपात की, तो मैंने देखा कि अरे, मैं क्यों ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू शायरों के कर रहा हूँ, क्यों मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सिंगर्स या म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ गुजार रहा हूँ। तो इसी तरफ तो मेरा ध्यान है, मुझे कुछ करना चाहिए तो इसी तरफ करना चाहिए। और इस गीत से पहले एक और गीत राजेश रोशन साहब ने भी रिकॉर्ड किया था कुमार सानू की आवाज़ में, एक एल्बम हम लोगों ने तैयार किया था जिसका नाम था कहना तो है। और जैसे वो गीत रिकॉर्ड हुआ, उसके तुरंत बाद ये गीत रिकॉर्ड हुआ। तो कोई, मैं बहुत सेवा कर रहा था साहित्य की, या मेरा कोई दीवान या संकलन या मजमुआ आ चुका था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ, एक पल का जीना फिर तो है जाना, और ये इतना ज़्यादा मकबूल हुआ, तो मैंने सोचा कि जिस काम को मैंने सबसे आसानी के साथ किया, वो गीत तो हिट हो गया, वो काम तो हिट हो गया, तो मुझे शायद इसी दिशा में कुछ करना चाहिए।
ओके विजय भाई, तो ये गाना आपका इतना हिट हुआ, इसके बाद आपने फिल्मों के लिए तो लिखा ही, साथ में आपने काफी नॉन फिल्मी म्यूजिक एल्बम्स भी किए, जैसे खयाम जी के साथ आपने एक एल्बम किया, आशा जी के साथ एक एल्बम किया, तो थोड़ा सा वो बताइए कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा।
आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने कुछ नॉन फिल्म एल्बम्स भी किए। सबसे पहला तो जिसका मैं करना चाहूँगा वो जहन नसीब है, जो खयाम साहब के साथ किया मैंने। देखिए, खयाम साहब आज नौशाद साहब के गुजरने के बाद सबसे पुराने, सबसे घने गीतकारों में से एक, बल्कि वही सबसे अव्वल नंबर पर, और उनके साथ मैंने काम किया, ये मेरे लिए एक कितनी किस्मत की बात है, मैं कह नहीं सकता आपसे। जहन नसीब, और उन्होंने जिस नज्म का चयन किया, वो नज्म भी मेरी बेहतरीन नज्मों में से एक है। मेरे शहरों शहरों खुशबू है, मेरा नाम जुबान उर्दू है, हर रुख पे मेरी रौनक है, हर लब पे मेरा जादू है, मेरे शहरों शहरों खुशबू है। इसमें आवाज़ है अनिता सिंह जी की, जो एक राजनीतिज्ञ की पत्नी है अभिषेक मनु सिंह जी की। अच्छा, आशा एंड फ्रेंड वो एल्बम है जिसमें आशा जी ने मेरे लफ्जों को अपनी आवाज़ दी। और आशा एंड फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि उसमें आशा भोसले जी ने अपने दोस्तों के साथ सारे नगमे गाए हैं। अगर आपको याद हो, कुछ वर्ष पहले आशा जी ने संजय दत्त साहब के साथ एक नगमा गाया था जो मेरा ही लिखा हुआ था, आपके दिल में थोड़ी जगह चाहिए, जाइए 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 जाइए, पास आने भी दीजिए न इतराइए, जाइए 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 जाइए। और उसी एल्बम में एक आशा जी और उर्मिला मातोंडकर का गीत है, मैं महबूबा महबूबा दिलरुबा दिलरुबा, वो भी गीत सुनने लायक है। और कुमार सानू के साथ किया, बहुत सारे एल्बम किए हमने, रूप कुमार और सोनाली राठौर के साथ मोहब्बत हो गई एल्बम, मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है, जहाँ भी जाओ मेरे लिए तो तेरी ज़रूरत सी हो गई है, ये तो सभी कहा आपने। और इन दिनों भी कई एल्बम्स कर रहा हूँ जो गैर फिल्मी हैं और कुछ फिल्में भी हैं।
जी विजय भाई, एक सॉन्ग ब्रेक हम लोग लेने वाले हैं, तो आपके किसी नॉन फिल्मी एल्बम का ही कोई गीत हम सुनवाते हैं, तो आप ही बताइए कि कौन सा गीत हम सुनवाएं, और उस गीत से जुड़ी हुई कोई खास याद आपके दिल में अगर है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए।
देखिए, अगर मोहब्बत हो गई एल्बम से, मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है, जहाँ भी जाऊँ मेरे लिए तो कोई जरूरत की हो गई। यह गीत अगर आप बजाएं तो अच्छा लगेगा मुझे भी सुनना। देखिए सजीव साहब, कहना इतना है कि बात का पत्नी है कि हम तो लफ्जों के सहारे जीते हैं, हम तो लफ्जों के सहारे जीते हैं, किसकी होगी हमसे बेहतर जिंदगी, ये मेरा ही शेर है। जब भी लफ्जों पे कोई प्रहार होता है तो दिल से एक चीख सुनकर जाती है। हमारे इस गीत को गाते वक्त किसी तरह की एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और सिंगर साहब ने मुझे मोहब्बत सी हो गई है, तुम्हारी आदत सी हो गई है ऐसा गा दिया। तो हमने पहले तो उनका बहुत प्यारे तरीके से विरोध किया कि नहीं, ये ग्रामर इसका गलत है, मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है, यही होना चाहिए। और फिर जब वो या मेरी कंपनी ना माने तो हमने जरा सा अपना रुख कड़ा कर लिया और इस मूड में आ गए कि नहीं, ये तो बदलाव करना ही पड़ेगा वरना मुश्किल होता है। और फिर गीत अच्छा था, लफ्ज अच्छे थे, इसलिए इसको बदला गया। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है, ये किया गया। हालांकि एल्बम का नाम जब इस गीत पे रखा गया तो वहां भी होना चाहिए था मोहब्बत सी हो गई, मगर वहां पे हमारी बात नहीं मानी, हमें पता नहीं लगने दिया गया और मोहब्बत हो गई एल्बम का नाम रखा गया, क्योंकि उसको होना चाहिए था मोहब्बत सी हो गई। यही कहानी सुनानी शायद इस वक्त माकूल बात होगी।
जी विजय भाई, खुद भी एक गीतकार हूँ तो आपकी ये बात मैं बहुत बाखूबी समझ पा रहा हूँ। तो चलिए सुनते चलते हैं ये गीत और उसके बाद फिर हम सिलसिला जारी रखते हैं बातों का।
हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है, जहाँ भी जाऊँ मेरे लिए तो, जहाँ भी जाऊँ मेरे लिए तो तू एक जरूरत सी हो गई है। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है, जहाँ भी देखूं ये मेरी दुनिया, जहाँ भी देखूं ये मेरी दुनिया, खूबसूरत सी हो गई है। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है।
दोस्तों आप सुन रहे हैं एक मुलाकात जरूरी है और आज के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में जो हमारे मेहमान हैं वो है एक मशहूर शायर, गीतकार और लेखक विजय अकेला जी। तो विजय भाई, एक बात मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आपका पहला गाना इतना बड़ा हिट हुआ, उसके बाद जो आपने गाने किए उनमें भी अधिकतर आपने काम राजेश रोशन जी के साथ किया, तो बाकी संगीतकारों से आपकी ये दूरी क्यों रही, इसकी वजह क्या रही?
देखिए, मैंने इसका जवाब तो अभी तक ढूंढा नहीं है, जिस दिन ढूंढूंगा आप यकीन जानिए सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। मुझे दो शेर हमेशा बहुत परेशान करते हैं, एक तो ये कि साहिर का कि एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ता है। उसी जगह पे रह के आप जिंदगी में कुछ भी नहीं पाएंगे। और दूसरा शेर है अल्लामा इकबाल साहब का कि तू ही नादा चंद कलियों पे कनायत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी। तो ये जो बागीचा है, ये जो दुनिया है, उसमें इतने मकाम हैं कि जहाँ पे आपको फुर्सत नहीं मिलती है उस मकाम पे अपना आशियाना बनाने में। देखिए, मैंने रेडियो जॉकिंग की, फिल्म जर्नलिज्म किया, कुछ एक्टिंग की, गाने लिखे, शायरी की किताबें लिखी। मुझे इतना बेचैन आनंद बख्शी साहब के गीतों ने कर दिया कि मैंने उन पर किताब लिखी, मैं शायर बदनाम, उसके बाद निगाहों के साए, और फिर अपना दीवान लश्कर। और इन दिनों मेरी एक और किताब आई है, जावेद अख्तर और मैं। तो बहुत सारे कामों में बिजी हूँ, और जब कोई अच्छा ऑफर आता है तो मैं जाता हूँ वहाँ पर। लेकिन जब मुझसे ये कहा जाता है कि मैं अपने आप को रिपीट करूँ, तो ये मुझे मंजूर नहीं।
जी विजय भाई, बहुत खूब आपने बात कही। मैं आपकी उन किताबों पर ही आने वाला था। आपने बहुत शिद्दत से, बहुत खूबी से इन तमाम गीतकारों के ऊपर, आनंद बख्शी साहब, जानेसार अख्तर साहब, और अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब पर आपने लिखा, बहुत गहराई से लिखा, बहुत दिल से लिखा है। हालांकि मैं आपकी किताबें अभी पढ़ नहीं पाया हूं बदकिस्मती से, लेकिन इतना ज़रूर महसूस किया है कि कोई शायर या कोई गीतकार अगर इन नामी गिरामी गीतकारों के ऊपर कुछ लिख रहा है तो बहुत गहराई से महसूस करके ही लिख सकता है। तो अभी जैसे आपने मुझे बताया कि बख्शी साहब के गीतों ने आपको बेचैन कर दिया, तो ये जानना चाहता हूँ कि वो बेचैनी कैसी थी।
सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि आनंद बख्शी साहब के ऊपर आई ये पहली और आखिरी किताब है। तब तक जिन दिनों आनंद बख्शी साहब गुजरे थे, उन दिनों दावे तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, मगर ये अब तक की आखिरी किताब है आनंद बख्शी पे और पहली थी। क्या करें आनंद बख्शी साहब के बारे में आपसे बात की। मैं शायर बदनाम, शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, और अभी जीत के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के काम, मैं चला, मैं शायर बदनाम। देखिए, इतना कहना चाहूँगा कि जिस वक्त मैं बहुत बच्चा था, उस वक्त मेरी माँ जी मुझे अपने आंचल का दूध पिलाती थी और ये गीत सुनाती थी जो आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ था। सुलाती थी, जगाती थी, फैलाती थी, फुसलाती थी कि चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा ये कौन है जादूगर जो इतनी गजब की बातें कर रहा है। हर हर गीत आनंद बख्शी का एक नई बात कहता है। जैसे कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी को देख कैसी है नेक, अच्छा बुरा न देखे, सब हैं सवार दुश्मन के यार, सबको चली ये लेके, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है। क्या कहूँ मैं आपसे आनंद बख्शी के बारे में। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, आंखों में रुकते नहीं जो आंसू निकल जाते हैं। कभी आनंद बख्शी के गीतों को संगीत से हटा के देखिए, कभी इस अंदाज में सुनिए जैसे मैं सुना रहा हूँ, फिर देखिए उसमें कितने गहरे अर्थ निकलते हैं। गुलशन में फूलों के साथ खिलते हैं दिल में गुलाब, होता है जब प्यार तो लगता है पानी शराब, दो घूट पीते ही लेकिन ये होंठ जल जाते हैं, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं।
जी विजय भाई, बख्शी साहब के क्या कहने। अच्छा बख्शी साहब, तो जैसे आपने बताया कि आपके बचपन के, जवानी के हम सफर रहे, लेकिन जानेसार अख्तर साहब तो आपके समय से काफी पुराने रहे होंगे, उन पर क्या आपने कुछ अलग से कुछ रिसर्च वगैरह किया।
जानेसार अख्तर कैसे हमारे वक्त से पहले के रहे, क्या उनके नगमे हम आज भी नहीं सुन रहे हैं, बताइए। सारे नगमे जानेसार अख्तर साहब के भी बजते ही रहते हैं, मगर ये बात अलग है कि हम ये नहीं जानते कि ये जानेसार अख्तर साहब ने लिखे हैं, है कि नहीं, बताइए बताइए। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है। ये जानेसार अख्तर का नगमा है क्या पुराना नगमा है, नूरी का जो गाना है ये क्या पुराना नगमा है, हम आज भी सुनते हैं और खूब सुनते हैं। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ये क्या कल के नगमे हैं, अरे नहीं साहब, ये आज ही का नगमा है। और ये जो परंपरा है फिल्म जगत में के शायरों को थोड़ा छुपा के रखो और बाकी सबों को उजागर करके रखो, यही वो गुस्सा है जो मुझे शायरों पे काम करने को उकसाता है। देखिए, जानेसार अख्तर ने इतने कामयाब गीत लिखे। उनकी गजलों की, उनकी नज़मों की किताबें तो बचपन से हमारे पास हैं, आपके पास हैं, अदब के पास हैं, मगर उनके फिल्म गीतों को लोगों ने यूं समझा कि जैसे इन्हें क्या कलेक्ट करने की ज़रूरत है। बस ठीक है, वो तो फिल्मी गीत है, मगर क्या फिल्मी गीत फिल्मी गीत होते हैं? तो मेरी एक जिद थी, नहीं नहीं, मैं इन्हें ज़ाया होने नहीं दूंगा, इन फिल्मी गीतों को जो जान सारा कर साहब ने। और फिर एक यात्रा पर निकल पड़ा दुकानों में, यहाँ वहाँ, सिर्फ 5-6-7 फिल्मों के नगमे मिले जो जानकार अख्तर साहब ने लिखे। और फिर एक लंबी यात्रा शुरू हुई, और जब जाकर मैंने जाना कि जानकार अख्तर ने एज अ लिरिसिस्ट 80 फिल्मों में गीत लिखे। आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही, आहटों सी अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही रात जाती रही, ये जानकार अख्तर का ही लिखा हुआ नगमा तो है। ऐ दिल नादा, आरजू क्या है, जस्तजू क्या है, ये जानकार अख्तर ही का तो लिखा हुआ नगमा है। ऐसे कई नगमे, और क्या खूब लिखे हुए। देखिए, इंडो चाइना वॉर के वक्त जानकार अख्तर का लिखा हुआ, खयाम का कंपोज किया हुआ, मोहम्मद रफी साहब का गाया, एक बड़ा ही कमाल का गीत है, आवाज दो हम लिखे। अब हैरत में पड़ जाएंगे कि 99% जगहों पे ये साहिब लुधियानवी के नाम से मानते हैं, इसके राइटर साहिब लुधियानवी हैं। तो इन किताबों की उपयोगिता इस तरह से भी तो बढ़ती है कि भाई जिनके गीत हैं उनके नाम से मनसूब हैं, और इन परिस्थितियों में लिखे गए, उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, राजनैतिक परिवेश क्या था, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी किताबों की बड़ी अहमियत है।
यकीनन विजय भाई, और साहिर पर, शैलेंद्र पर तो बहुत चर्चाएं और किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो ये आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है कि आपने एक ऐसे शायर को, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने 80 फिल्मों में गाने लिखे हैं, इनफैक्ट ये मेरे लिए भी एक जानकारी है, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था कि बहुत कम फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। खैर, बहुत खूबसूरत आपने काम किया है विजय भाई। अच्छा, एक बताइए, जावेद अख्तर पर जो आपकी ताज़ा किताब आई है, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए कि इस किताब में आपने जावेद साहब के किन किन पक्षों को रखा है और क्या खासियत है इस किताब के अंदर?
देखिए, जावेद अख्तर होने का मतलब अपने वक्त का, अपने कालखंड का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होना ही तो होता है, और फिर तो उनसे जुड़ी छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी और संग्रहणीय हो जाती है, जिसे हम और आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने भी न सिर्फ जावेद अख्तर ही के युग में पैदा होने का जुर्म किया है, बल्कि उनसे मिलने के सैकड़ों अवसर भी पाए हैं। ये किताब जावेद अख्तर और मैं, एक दस्तावेज, याद की वो रह गुजर है जहाँ से हर हार जीत में तब्दील होने शुरू हो जाती। मैं एक दो बात और कहनी चाहता हूँ जावेद अख्तर और मैं किताब से मुतालिक। देखिए, इस किताब का जो नमक है वो सलीम खान साहब का प्रीफेस है। सलीम खान साहब जावेद अख्तर साहब प्यार ही किताब पे अपना प्राग कथन लिखेंगे। ये सोच है अपने आप में गजब की है। फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोगों ने मुझसे यही कहा कि आप ये काम सलीम खान से करवाएं, जिनकी जोड़ी थी जावेद अख्तर के साथ, और उन्होंने प्रीफेस लिखा जो बहुत कीमती है। दूसरी बात ये है कि मतलब के हर जगह तो यही होता है कि आप किसी शख्सियत पे जब किताब लिख रहे होते हैं तो उनको ये बात मालूम होती है कि उनसे एक किताब लिखी जा रही है, और वो भी बहुत सारी सामग्री आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं कि देखिए ये फोटो ना छोड़ दीजिएगा, ये बात लिखनी ना छोड़ दीजिएगा, आप ऐसे इस बात को समझिए, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने ये किताब जावेद अख्तर साहब को दिखाई नहीं, मैं उनको बताई कि मैं ये काम आपको कर रहा हूँ, जबकि हमारी गहरी दोस्ती है, जबकि वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हम तो खैर उनके फैन हैं ही। जब ये किताब मुकम्मल हुई, जब ये किताब amazon.com से छपी, जब इस किताब में प्रीफेस सलीम खान ने लिख दी, तब जाके मैंने उन्हें ये किताब दिया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पहलू कह सकते हैं इस किताब का है। मैंने आनंद बख्शी के रहते ही नशार बदनाम किताब कंप्लीट कर ली थी, मगर उन दिनों कोई पब्लिकेशन हाउस इसे छापने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो आनंद बख्शी को फिल्मी गीतकार मानते थे, इल्मी गीतकार नहीं। और फिर जब आनंद बख्शी कुछ महीनों के बाद गुजरे तो उसके बाद वो किताब छपी। जावेद अख्तर और मैं किताब जावेद अख्तर के रहते रहते आ जाए, मजा तो इसमें है, बात तो इसमें है।
जी विजय भाई, एकदम सही कहा आपने, और मैं अपने सभी श्रोताओं को ये रिकमेंड करूंगा कि वो आपकी ये किताब जरूर 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 पढ़ें। तो विजय भाई, अब आप हमारे साथ हैं और हमारा कार्यक्रम भी समापन की तरफ है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इतने उमदा शायर हमारे साथ बैठे हैं, तो अपनी शायरी का कुछ नमूना आप अवश्य हमारे श्रोताओं के लिए पेश करें।
कैसी चीज सुनाऊं आपको? चलिए एक रोमानी नज्म पेश खिदमत है, जिसका उनवान है एक लड़की से इश्क। मुझे एक लड़की से इश्क हो गया है, मुझे एक लड़की से इश्क हो गया है, करूं जिसकी बातें तो खुशबू सी फैले, जो शायर उसे देख ले शेर कहले, तसव्वुर से लेकिन मेरा जी न बहले, करूं जिसकी बातें तो खुशबू सी फैले, जो शायर उसे देख ले शेर कहले, तसव्वुर से लेकिन मेरा जी न बहले, कि जिसने हकीकत में मन को छुआ है, मुझे एक लड़की से इश्क हो गया है, वो लड़की नहीं एक हसरत है मेरी, वो हाथों की रेखा है किस्मत है मेरी, मोहब्बत है मेरी इबादत है मेरी, खुदा से जो मांगी थी ये वो दुआ है, मुझे एक लड़की से इश्क हो गया है। ये मैंने आपको अपनी नज्म अपने मजमूए लश्कर से सुनाई। चलिए इसी मजमूए से एक दो शेर आपको और सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आए। कुछ दिनों से उसे हुआ क्या है, कुछ दिनों से उसे हुआ क्या है, जाने वो मुझसे चाहता क्या है, जिससे खुश है उसी से है नाराज, हम नहीं समझे मामला क्या है, दिल अगर है तो चोट खा दिल पे, जो न टूटे वो आईना क्या है।
बहुत खूब विजय भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा है आपने, और जैसा आप हमेशा ही लिखते हैं, आपसे बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, और आपको आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले किसी एपिसोड में भी आपसे अगर मुलाकात होगी तो हम आपके नए कामों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको इस साल आपके आए ताज़ा गीत, जो आपने फिल्म जब तुम कहो के लिए लिखा है, इस पर मैं अपने श्रोताओं को छोड़ रहा हूँ। आपने अपना समय निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
मैं आपके चैनल पे सुन रहे श्रोताओं का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना वक्त निकाला और मुझे सुना, लेकिन साथ ही साथ अपने श्रोताओं से मैं ये भी कहूँगा कि अब जबकि मैं फिल्म निर्माण में लगना चाहता हूँ, स्क्रिप्ट तैयार है, तो इसके लिए बहुत दुआएं करें वो, ताकि मुझे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कामयाबी मिले। शुक्रिया।
लौटने को है बताओ ना कब आओगे।